نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم صحیح بخاری کے اگلے سیشن کا آغاز کریں گے اور بہت ہی خوشی کے ساتھ آج ہم نیا ٹاپک کتاب العلم شروع کریں گے. ابھی تک الحمدللہ ہم دو کتابیں پوری کر چکے یا دو موضوع پورے کر چکے. پہلا کیا تھا؟ کتاب الوحی. وحی کیسے آئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پیغام آیا وہ کیسے آیا. اور دوسرا طویل ٹاپک ہم نے ایمانیات کے موضوع پر کیا. آج ہمارے سامنے جو ٹاپک ہے وہ ہے کتاب العلم. کتاب کا معنی چیپٹر کہہ لیجئے عربی زبان کے ناطے سے. کتاب کا پیج نمبر 113 ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہاں کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم لانے کی کیا وجہ ہے. تو پہلی بات اس کی وجہ سمجھ لیجئے کہ جب سچا ایمان اندر آتا ہے تو عمل کرنے کو دل چاہتا ہے، اور عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا یہ بہترین طریقہ ہے. آج امت مسلمہ کو اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے لوگ عمل تو بہت سارے کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ اعمال کو چیک کرنے کا کوئی کرائیٹیرین نہیں ہوتا کہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ نہیں ٹھیک کر رہے. تو کتاب العلم سے ہم علم کی فضیلتیں بھی پڑھیں گے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کو یہاں لا کر امت کو ایک اور بات بھی سمجھانی چاہیے، اور وہ کیا ہے کہ حدیث کا یہ علم جمع کرنے میں ان کو جتنی مشقتیں سہنی پڑیں وہ اصل میں ان کی دوسروں کے ساتھ خیر خواہی تھی. شروع میں ہم انٹرو والے لیکچرز میں سن چکے ہیں کہ کتنے لمبے لمبے سفر کرتے تھے محدثین کہ ایک حدیث کو لینے کے لیے. تو بیسیکلی علم کی شان اگر آپ کہیں تو مجھے تو ایک جملے میں سمجھ آ جاتی ہے کہ دین اسلام کا پہلا حکم جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اقرا بسم ربی کا، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ. جس دین کی بنیاد کی پہلی اینٹ علم پہ تھی، آپ بتائیے کیا اس علم کے ساتھ ہمارا تعلق ایسا ہونا چاہیے جو آج امت مسلمہ کا؟ ایسے لگتا ہے کہ اقرا کی جگہ کھل، اشرب، کھاؤ، پیو، موج مستی، عش، البس، پہنو، موج کرو، یہ زندگی کا مقصد بن گیا. پھر آپ دیکھیے کہ پہلی نعمت جو آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کے بعد دی گئی، علم آدم الاسماء کلہا، علم کی دولت تھی. انسان کو پہلی نعمت علم کی ملی، دین اسلام کی پہلی بنیاد جو تھی وہ علم کی اٹھا دی گئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت حدیثیں موجود ہیں کہ علم کے راستے پہ چلنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. حضرت جابر ایک آپ کے بڑے پیارے صحابی تھے، ان کو پتہ چلا کہ ایک شخص ملک شام میں رہتا ہے اور اس کو اللہ کے نبی سے حدیث معلوم ہے جو انہوں نے براہ راست سنی. جابر نے ایک اونٹ خریدا صرف اس مقصد کے لیے، اس پر سفر کر کے ایک مہینہ تک سفر کیا اور ملک شام پہنچے، اور اس صحابی جن کا نام عبداللہ بن انیس آتا ہے ان کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، جا کے یہ سوچ میں پڑ گئے کہ کہیں وہ آرام نہ کر رہے ہیں، ان کو ڈسٹرب نہ کروں، جب وہ خود اپنی کسی ضرورت سے گھر سے نکلیں گے تو ان سے بات کروں گا. یعنی جب کسی چیز کا مقام ہوتا ہے تو پھر اس بات کے کرنے والے کا بھی مقام ہوتا ہے. اور یہی ہوا، جب عبداللہ بن انیس باہر آئے تو ملے، دونوں جانتے تھے، دوست تھے. ارے جابر تم ادھر کدھر، تم کیسے، آؤ اندر بیٹھو، سناؤ کیا حال ہے. کہا بس اس سوچ کے ساتھ آیا ہوں کہ ایک حدیث جو تم نے سنی ہوئی ہے میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں، تاکہ اس حدیث کی چین میں میرا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ آ جائے. پتہ پہلے بھی تھی حدیث، لیکن وہ ان فلان 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 ذرا لمبی چین تھی نا. کہا براہ راست تمہارے بعد میرا نام آ جائے تو میرا بھی اس سند میں حصہ ڈل جائے. یہ چھوٹا سودا نہیں ہوتا. آپ اور میں تو کہیں گے ہائے ایک مہینے کا سفر اور اتنا مہنگا گھوڑا خریدا، اتنی صحبتیں، صحیح نہیں، وہ نام بھی تو آ گیا نا اس حدیث میں. کہا واقعی صرف اس کے لیے آئے ہو؟ کہا یہاں. کہا پھر سناؤں حدیث کیا تھی؟ کہ من سلک فی طریق، جو چلا کسی راستے پر تاکہ اس میں علم حاصل کرے، تو سخل اللہ لہ طریق الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا. میں سوچتی ہوں اکثر جب یہ حدیث پڑھتی ہوں کہ حضرت جابر کی تو ساری تھکن ہی اتر گئی ہوگی اس حدیث کو سن کے. تو علم جنت کے راستوں کا سائن بورڈ ہے، علم سے بہت کچھ ہوتا ہے. اس ٹاپک میں حدیثوں میں ہم اس میں علم کی فضیلت نہیں صرف پڑھیں گے بلکہ ڈفرینٹ مسئلے اخذ ہوں گے، لیکن انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کو اس ٹاپک کے دوران علم کے بارے میں کچھ نہ کچھ باتیں بتاتی جاؤں گی. तो आइए देखते हैं कि तरतीब के एतबार से इसमें कौन सी हदीस है। पहला बाब है और हदीस का नंबर 54 यानी 54 है, फजलुल इल्मी, इल्म की फजीलत। ये लफ्ज फजल भी कभी समझ नहीं आया, जिनका नाम फजल है उनसे माजरत के साथ। जरा इस फजल की मुमकिना सूरतें तो सामने लाइए। फजल, अल्लाह का बड़ा फजल है, उर्दू में बोलते हैं हाज़ा मिन फजल रब्बी कहते हैं ना, और क्या लफ्ज है इसे मिलता हुआ जो हमारे कल्चर में बोलते हैं हम जी? फजाइल आमाल, फजल की जमा, ठीक है, और फजीलत, ठीक है, और जी अफजल, ठीक है, बिल्कुल, और फजूल लफ्ज नहीं है इसी से फजूल? हाँ, ये क्या हुआ? तो लफ्ज फजल को समझ लीजिए, फजल कहते हैं मोर देन एक्स्ट्रा, वो चीज जो आप डिजर्व नहीं करते थे लेकिन अल्लाह ने अपनी रहमत से आपको अता कर दी। जब हम कहते हैं ना कोई चीज फजूल है तो उसका मतलब ये नहीं होता खराब चीजें हैं, आपकी जरूरत से एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो जब हम पढ़ते हैं फजलुल इल्मी, इल्म की फजीलत, तो पता क्या चला कि इल्म की क्या शान है, इल्म का क्या मुकाम है। इस हदीस को हम पढ़ेंगे, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत से आता है। अनबी हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु قال बैनमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी मजलिस, एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में लोगों से कुछ बयान कर रहे थे। क्या खूबसूरत वो मजलिस होगी, आप कोई बात बयान कर रहे थे, युहद्दिसुल कौम, लोगों को बातें बता रहे थे। हुआ क्या, जाहु अराबीयुन, एक अराबी आया। अराबी कौन होता है? बद्दू, देहातों में रहने वाले, सबर्ब्स में रहते थे, मक्का और मदीना के किनारों पे लोग जो रहते थे, अरे अमूमन कम पढ़े लिखे होते थे। खैर, इसने आकर पूछा, फकाला, तो कहा, मतसातु, कब आएगी क्यामत, यानी क्यामत कब आने वाली है। फमदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहद्दिसु, बस गुजर गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बात से अपनी बात बयान करते रहे। क्या मतलब है, उसने तो ये सवाल पूछा लेकिन अल्लाह के नबी ने उसको कोई जवाब नहीं दिया, अपनी बात कंटिन्यू की। यहां से असल में मसला यही अखज कर रहे इमाम बुखारी कि जब इल्म देने वाला इल्म दे रहा हो और कोई कम समझ बंदा बीच में बोल पड़े, या अभी सवाल जवाब सेशन नहीं आया और सवाल कर दे, या हाथ खड़ा कर दे, या बेचैनी का इजहार करे, तो इल्म देने वाले को हक हासिल है कि उसकी बात का जवाब दिए बगैर आगे चला। ये है असल मसला। आगे हदीस पूरी हम पहले पढ़ लेते हैं। अल्लाह के नबी ने उसकी बात को कोई अहमियत नहीं दी। समीअ मा क़ाला फ़करीहु मा क़ाला, लोगों में से कुछ लोग ये सोचने लगे कि अल्लाह के नबी ने अराबी की बात सुन तो ली है, समीअ मा क़ाला, आपने सुना है जो आपने कहा है, लेकिन फ़करीहु मा क़ाला, लेकिन आपने नापसंद किया उसकी बात को। यहां से एक और बात भी पता चलती है कि अल्लाह के नबी को जब किसी की बात नागवार गुजरती थी तो खामोश हो जाते थे, आगे से बहस नहीं करते थे, जाओ भाई तुम अपनी खुद भुक दो। हर वक्त डांट डपट भी फायदा नहीं देती। खैर, वकाला बाद हूं, लेकिन बास लोगों ने कुछ और कहा, यानी लोगों में बातें शुरू हो गई, जैसे कमेंट पास करने की लोगों की आदत होती है, डिस्कशंस शुरू हो गए, बास कहेंगे बल लम यस्मा, नहीं नहीं अल्लाह के नबी ने उनकी बात ही नहीं सुनी। ऐसा होता है ना, किसी भी महफिल में आप देखिए कि कोई भी बात होती है ना तो लोग मुख्तलिफ किस्म का रिएक्शन शो करते हैं, तो लोगों ने मुख्तलिफ तरह से राय देनी शुरू कर दी। कोई कहता है अल्लाह के नबी ने सुनी है तो बात उसकी अच्छी नहीं लगी इसलिए जवाब नहीं दिया, कुछ ने कहा नहीं जी नहीं अल्लाह के नबी को हो सकता उसकी आवाज ही नहीं सुनी। खैर, हत्ता इजा कदा हदीस हो, यहां तक कि जब आपने अपनी गुफ्तगू पूरी की, अपनी बात पूरी की, काला फिर फरमाया, ऐना किधर है, अराहू फिर देखा उसको, असाइल ने साथी किधर है वो शख्स जिसने क्यामत के बारे में पूछा। यहां से देखिए अल्लाह के नबी का हिल्म, सबर, बात पूरी की जब कर चुके तो कहा किधर गया वो शख्स कि जिसने क्यामत के बारे में पूछा। फकाला, तो वो अराबी बोला, हा अना या रसूलुल्लाही, मैं इधर हूं ऐ अल्लाह के नबी, यानी मैं इधर मौजूद हूं। अच्छा, यहां से यह भी पता चलता है अराबी था लेकिन गुस्से में उठ के नहीं चला गया, हाँ मेरी बात तो मानते नहीं, ये भी एक एटिकेट दिखाया गया है कि बात का जवाब नहीं भी मिला फिर भी वो चुपका हुआ बैठा रहा। जब अल्लाह के नबी ने पूछा किधर है तो उन्होंने कहा मैं हूं। काला, फिर आपने फरमाया, अब ये नबी सल्लम के अल्फाज हैं, आप लोग मेरे साथ दोहराइएगा, फ़ाइज़ा दुइयतिल अमानतु, जाया की जाएगी अमानत, ये जो लफ्ज है ना, ये आप देखिए लफ्ज दुइयती, ऐसे ऐसे पढ़ेंगे ना, दुइयती, जाया की जाएगी अमानत, फन तजिर सात, फन तजिर सात, तो क्यामत का इंतजार करो। यानी उसने कहा क्यामत कब आएगी, वो तो सोच रहा था आप सन डेट महीना तारीख बता देंगे, तो अल्लाह के नबी ने तारीख बताने के बजाय उसकी अलामत बता दी कि जब अमानते ज़ाया होने लगेंगी। खैर उसने क्या किया, फ़क़ाला तो उसने पूछा कैफा कैसे होगा इदा अतुहा उसका ज़ाया होना। इदा अतुहा में हा की ज़मीर अलमाना तो की तरफ है कि अमानत ज़ाया होगी, तो कहने लगा कि ये कैसे होगी। कौला तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा जब वुसिदल अमरु, ये आप लोग पढ़िएगा इज़ा वुसिदल अमरु इला गैरी अहलिही फंतज़िर सआता, जब मामलात गैर अहल लोगों के हाथों में दिए जाएंगे तो क़यामत का इंतजार करना। अब इस एक हदीस में बहुत सारी बातें, पहली बात है कि इसको किताबुल इल्म में लाने की हिकमत इमाम बुखारी की क्या, अल्लाह के नबी का ये अमल कि आप अपनी बात कर रहे थे लेकिन बीच में किसी ने आके टोका तो आपने उसकी बात का जवाब फौरी तो नहीं दिया, लेकिन जब बात पूरी हो गई तो उसके बाद आपने उस बात को दोबारा पूछा और फिर उसके बाद उसको मुखातिब किया। अमल की बात क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात पूरी करने के बाद बिल्कुल अचानक खुद ही नहीं कह दिया कि क़यामत तब आएगी जब अमानतें ज़ाया होंगी, बल्कि उस साइल को पूछा किधर है वो। यहाँ ये अमल का नुक्ता नोट कीजिएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े तालीम में ये चीज़ मौजूद थी कि पूछने वाले को कॉन्शियस कर देते थे। हो सकता है उस वक्त उठ के चला गया होता तो अल्लाह के नबी उसका जवाब देते तो वो फ़ायदा ना होता, ठीक है, ये भी एक इसमें से मसला खज़ होता है। फिर दूसरी बात एक और भी समझ में आती है कि लोग बड़ी जल्दी कमेंट्स देते हैं लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात को दिल में रखते थे, मौके की मुनासबत से बताते थे। फिर उसके बाद एक और चीज़ पता चलती है कि क़यामत कब आएगी, ये सवाल हमेशा से लोगों के जहनों में रहा। और अगली बात ये पता चलती है कि क़यामत कब आएगी, इसके इल्म की बजाय उसकी अलामतों का इल्म अल्लाह के नबी ने क्यों दिया, कि अब इंतज़ार करो कैसा हो, नहीं बल्कि कहा कि अमानतों की हिफाजत करो। तो हमारे लिए इसमें अमल की बात यह है कि कहीं भी, अब मैं और आप इस पर अमल कैसे करें, हमारी जिम्मेदारी दूसरों के हाथ में कैसे है, इसको बड़े लेवल पर रख लीजिए। हुकूमत के लेवल पर तो खिलाफत वजारत और इसी तरह के जो दूसरे इश्यूज़ हैं उसमें जब हमें राय देनी पड़े तो बहुत सोच समझ के दें, यानी वोट की अहमियत भी आप इसमें रख सकते हैं कि हमें जब किसी को चुनना पड़े तो कैसे चुने। फिर दूसरी एक और चीज़ इसमें छोटे लेवल पे भी समझ आती है और वो क्या है कि जब भी किसी को कोई जिम्मेदारी दे, इवन आप माएँ हैं तो घरों में बच्चों को भी देती हैं, आप अपने हर वक्त तो हम लोग इन्हीं चीज़ों में रहते हैं, इंसान होने के नाते ये कभी नहीं हो सकता कि आपको किसी दूसरे की जरूरत ना पड़े, तो जब किसी को कोई काम दें तो ये देख लीजिए कि वो अमीन है कि नहीं। दो खूबियाँ हैं किसी को भी काम देने की, कवी हो, उस काम की कुदरत रखता हो, एलिजिबल हो उसका, और दूसरी बात है कि अमीन भी हो। बाज लोगों में खूबियां बहुत होती हैं लेकिन वो अमीन नहीं होते, सिंसियर नहीं होते, चलाक होते हैं, होशियार होते हैं, 420ियां कर जाते हैं। बाज लोग बेचारे सिंसियर तो बहुत होते हैं, काम नहीं करना आता। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है कि जो अल्लाह से भी डरने वाला हो और दुनियावी तौर पर स्किल्ड भी हो। इसी तरह अगली महफिल भी दीन की देखिए जिसमें हमें एक और बात समझ आएगी। अगली हदीस है बाब नंबर 2 हदीस नंबर 55 बाबू मन रफा सौतहु बिल इल्मी, उस शख्स का जिक्र जिसने अपनी आवाज को बुलंद किया इल्म में, यानी इल्मी बातें बावाज़े बुलंद कहना, इसके बारे में क्या हुक्म है। अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, क़ाला कहा तखल्लफ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना फ़ी सफ़रतिन साफ़रनाहा, पीछे रह गए अल्लाह के नबी हमसे एक सफ़र में जब हमने आपके साथ सफ़र किया। पहली बात तो ये देखिए, वो लोग मुख्तलिफ जगहों से आते थे, कोई घोड़े पे कोई ऊंट पे, तो एक सफर था जिसमें हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि अल्लाह के नबी हमसे पीछे रह गए, फिर क्या हुआ फादरक ना, फिर वो हमको मिले, यानी जब नबी सल्लम हमें मिले तो वो कौन सा वक्त था, वक़द और तहकीक अर हकत न सलातू, तो छुट गई या देर हो गई हमसे सलात में, यानी नमाज हमसे जा रही थी, बिल्कुल नमाज का आखिरी वक्त था जब आप हमें मिले, व नहनु नतवद्दाउ और हम जल्दी जल्दी वुजू कर रहे थे, फजालना फिर हमने किया नमसहु अला अर्जुलीना, फिर हमने मसा किया अपने पाँव पे, यानी पाँव हाथ को गीला किया और पाँव पे फेरने लगे। फनादा, फिर आपने पुकारा, बियाला सऊती ही, ऊंची अपनी आवाज के साथ क्या कहा। ये अल्फाज आप सब दोहराएंगे साथ मिलके, वैलुन लिल आकाबी मिनन नार। वैल मैंने तबाही, हलाकत, बर्बादी, कुछ भी कह लीजिए, हलाकत है। लिल आकाबी, उन एड़ियों के लिए, आकाब क्या है, एड़ी, हील्स। मिनन नारी, आग में से। मर्रतैनी, दो बार। औ सलासन, या तीन बार। यानी सहाबा कराम वजू कर रहे थे और चूंकि नमाज के जाने का अंदेशा था तो जल्दी जल्दी वजू कर रहे थे, तो अल्लाह के नबी ने महसूस किया होगा कि इनके पाँव का पिछला हिस्सा कहीं खुश्क ना रह जाए। कभी होता है ना ऐसा? और आप देखिए कि मसह का लफ्ज है, इतना खुला पानी नहीं होता था कि वो पानी टूटी के नीचे रख के टूटी बंद करना ही भूल जाए। तो डर आपको क्या हुआ कि कहीं इनकी एड़ियां खुश्क ना हो। अब चूंकि ये इशू आपने दो तीन ज्यादा लोगों में देखा, तो बजाय इसके के पास जाएं, आप खड़े हुए ऊंची आवाज से आपने पुकार कर ये जुमला सबको सुना दिया कि जिसकी एड़ियां खुश्क रहेंगी वो एड़ियां आग में जाएंगी। क्या पता चला? इल्म देने वाले को बवक्ते जरूरत ऊंची आवाज से सबको इकट्ठे नसीहत करना, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई दिल सोजी की बात करते थे तो उस वक्त आपका यही अंदाज होता था। इसी तरह आप देखिए, आप इसको अपने ऊपर ले लीजिए, बच्चे घर में कोई गलत काम कर रहे हैं, एक होता है कोई एक बंदा कभी करता है, देखिए करता क्या है, आहिस्ता से नोट करें। लेकिन जब आप देखें कि एक काम सारे बच्चे कर रहे हैं या एक ही बच्चा बार बार कर रहा है, तो फिर उसको थोड़े से जोश से बात कर देनी चाहिए। फिर दूसरी चीज इसमें हमारे लिए अमल की बात क्या है कि सफर में नमाजें इधर उधर हो ही जाती हैं। यहां से एक और मसला खस होता है और वो क्या है कि नमाज कसर और जमा सफर के अंदर जो रखी गई है उसकी ये हिकमत है कि अल्लाह ताला हमें गुनाहगार होने से बचाता है। देखिए सफर के बारे में इस्लाम का नजरिया समझ लीजिए, सफर बेमकसद नहीं होते। हदीस में आता है कि सफर अजाब के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। घर का आराम कभी बाहर नहीं होता, चाहे आप फाइव स्टार होटल में हो, जो मर्जी कर ले। दूसरी बात है कि सफर के लिए जाएं, कम वक्त में जल्दी से काम करके वापस आ जाएं, ठीक है, ये जरूरत है। बगैर वजह के सफर को लटकाना नहीं चाहिए। आगे इंशाल्लाह जब हम इसके बाद एक टॉपिक छोड़ के अगला टॉपिक हमारा नमाज का ही आ रहा है, तो उसमें हम डिटेल से सारी नमाज की चीजें पढ़ लेंगे खुद हदीस से। लेकिन यहाँ ये पता चलता है कि नमाजें सफर में भी मुआफ नहीं है। ये अलग बात है कि उसके वक्त को इधर उधर किया जा सकता है। और अगली बात ये कि हम सब अब आज से अपने वजू के दौरान अपने पाँव का कोई हिस्सा खुश्क तो नहीं रह जाता, इसको देखें। खासतौर पर अब देखिए, जब सर्दियां होती हैं, ठंड भी होती है, स्किन खुश्क हुई होती है, समटाइम्स स्किन पे कोई आपने वेसलिन या पेट्रोलियम जेली या कोई ऐसी ऑयली चीज लगाई होती है, वो कतरे कतरे बन जाते हैं पानी के। तो बेस्ट थिंग है कि पूरे पाँव पे हाथ फेर लीजिए, इस तरह से पूरा मल लीजिए कि अगर कोई ग्लिसरीन टाइप चीज लगी है तो वो पाँव के अंदर आए, लेकिन खुश्क नहीं रखना होता, ठीक है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये उंगली जो छिंगली उंगली होती है, इसको पाँव की उंगलियों के बीच में करके इस तरह से भी देख लेते थे कि कहीं कोई खुश्क ना हो। तो ये इस्लाम का एक मिजाज है, अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया, इसलिए हमें इस पे अमल करना है। अगली हदीस देखते हैं, हदीस नंबर 56 है, बाप है 3। तरहुल इमामिल मसअलता अला असहाबिही लियख्तबरा मा इंदहुम मिनल इल्मी। मालूमात आसमाने के लिए उस्ताद का शागिर्दों के सामने कोई मसला पेश करना, यानी ये भी अल्लाह के नबी के तरीके तालीम में से मिलता है कि आप लोगों को कोई बात बताने से पहले पूछते थे। ये दोनों हदीसें पढ़ाते हुए मुझे याद आ गई एक और किताब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ मुअल्लिम 47। मेरा ख्याल है डिफरेंट मेथड्स हैं नबी सल्लम के तरीका तालीम के। अल्लाह के नबी का तरीका तालीम क्या था कि लोगों को प्रवोक करते थे, जिसको आप कहना चाहिए कि खुद ही नहीं बोलते रहते थे, सहाबा से भी पूछवाते थे, इंटरेक्टिव स्टाइल। आप ये इस हदीस के टॉपिक के ऊपर लिख लीजिए कि उस्ताद का तरीका तालीम इंटरेक्टिव होना चाहिए। ये कभी कभी होता था। और हदीस बड़ी खूबसूरत है, अन इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा काल, इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन मिन शजरी, बेशक दरख्तों में से, शजरतन एक दरख्त है, ला यस्कुतु वरकुहा, नहीं गिरते उसके पत्ते। वरक अरबी में पत्ते को कहते हैं, पतली चीज, रकीक, झिल्ली, तो उसी से वरक है। वइन्नहा, और बेशक वो मसलुल मुस्लिम, और वो मुसलमान के मुशाबे है। फहद्दिसूनी मा हिया, पस तुम मुझे बताओ वो क्या है। सवाल समझ आया? अल्लाह के नबी ने एक महफिल में बैठकर ये बात कह दी, کہ ایک ایسا درخت ہے کہ جس کی مثال مومن کی جیسی ہے اور جس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے، تو تم بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ ایک طریقہ تھا کہ بتا دیتے، لیکن آپ نے پوچھا. اب اس طرح یہ ایسی، جیسے ابھی میں کوئی بات بتانے سے پہلے آپ سے پوچھوں تو آپ الرٹ ہو جائیں گے نا، کوئی سو رہا تھا تو اٹھ جائے گا، کوئی کچھ سوچ رہا تھا اس کی سوچ واپس آ جائے گی. تو اللہ کے نبی نے ایسے ہی کیا. خیر جب آپ نے پوچھ لیا، فوقع الناس فی شجر البوادی، تو لوگوں کی سوچ گئی صحرائی درختوں کی طرف، یعنی لوگ سوچ میں پڑ گئے کہ صحرائی علاقوں میں کوئی درخت ہوگا، وہ ہوگا. قال عبداللہ ہی، تو عبداللہ بن عمر نے کہا، یہ چھوٹے بچے تھے اس وقت، ٹین ایج بھی نہیں تھے بلکہ لڑک پن کی ایج تھی، تو یہ کہتے ہیں وقع فی نفسی، گیا خیال میرے دل میں، پڑ گیا خیال یعنی میرے دل میں خیال آ گیا، انہ نخلتو، کہ یہ کھجور کا درخت ہے. اور نخل یا نخلا جو نا، یہ کھجور کے درخت کو کہتے ہیں، کھجور کو نہیں کہتے. کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن فاستحییتو، لیکن میں شرما گیا، حیا کر لی. کس بات کی حیا کی؟ کہ یہاں تو بڑے بڑے بیٹھے ہیں، ابو بکر بھی تھے اور ان کے باپ عمر بھی بیٹھے تھے. کہتے میں جھجک گیا اور مجھے بزرگوں سے شرم آئی. ثم قالو، آخر صحابہ بولے، حدثنا ما ہی، اللہ کے نبی ہمیں بتائیے وہ کیا ہے. صحابہ نہیں بولتے تھے، یہ ایک ان کی لحاظ اور شرم بھی تھی، اور پلس ان کو اس چیز کا احساس تھا کہ ہم غلط نہ بول دیں. تو جب انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ ہی بتا دیجئے وہ کون ہے، کون سا درخت ہے، قالا، تو آپ نے فرمایا ہی نحلتو، یہ کھجور کا درخت ہے. تو کیا پتہ چلا اس حدیث سے؟ بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو سمپل بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز انٹریکٹیو ہوتا تھا، کوشچننگ تھی، جس کو آپ کہتے ہیں نا کوشچن ارائز کرنا اور پھر اس کا جواب لینا. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کی بھی سوچ ابھرتی ہے اور بات بورنگ نہیں ہوتی. اور دوسری بات ہے کہ بعض دفعہ اگلا بندہ ایسا اچھا جواب دے دیتا ہے کہ جو بتانے والے کے ذہن میں نہیں ہوتا. تو یاد رکھیے، اچھے استاد جو ہوتے ہیں نا وہ شاگردوں سے بھی سیکھتے ہیں، اور اس کا اقرار کرنا چاہیے کہ بعض شاگردوں کے کامنٹس اور ان کی باتیں اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ استاد کی سوچ ادھر نہیں گئی ہوتی لیکن اس کے بعد چلی جاتی ہے. پھر دوسری اس میں ایک بات پتہ چلی کہ دین سیکھنے اور سمجھنے اور علم حاصل کرنے میں حیا نہیں کرنی چاہیے. جب اس محفل سے اٹھے تو ابن عمر کہتے ہیں اپنے باپ کو کہ ابو، جب اللہ کے نبی نے پوچھا تھا وہ کون سا درخت ہے تو میرے دل میں کھجور کا ہی درخت آیا تھا. کہا بیٹا پھر تو نے بتایا کیوں نہیں؟ تو کہا کہ میں شرما گیا. تو کہا کہ بیٹا اگر تو یہ بتا دیتا تو یہ میرے لیے دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہوتا. یعنی میرا بیٹا یہ بات سمجھ گیا. اور اصل میں یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں عموماً سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 24، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. تو گویا کہ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کھجور کا درخت مومن کے ساتھ ملتا ہے. پھر ایک اور چیز اس سے پتہ چلتی ہے کہ یہاں اللہ کے نبی مثالوں سے بھی بات سمجھاتے تھے. یعنی آپ کا ٹیچنگ سٹائل تمثیلی تھا، پیرابلز تھی، مثالیں دیتے تھے، انالوجیز یوز کرتے تھے. فائدہ کیا ہوتا ہے؟ میچ ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے کسی کو آپ کہہ دیں نا فلان چیز گلاب کے پھول جیسی ہے تو فوراً گلاب کے پھول سے وہ چیز یاد ہو گئی. جب کوئی چیز مثال کے ساتھ سمجھا دی جاتی ہے تو وہ دماغ کی تختی پہ لکھ دی جاتی ہے. پھر ایک ہلکی سی بات کر لیتے ہیں، حالانکہ پیچھے بات تو بہت ساری ہو گئی، لیکن چونکہ یہاں پھر مومن کی بات کھجور کے درخت، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مومن اور کھجور کے درخت میں کیا مماثلت ہے؟ تو آپ دیکھیے، پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے کبھی کھجور کا درخت دیکھا، اصل میں دیکھا یا گھی کے ڈبے پہ بنا ہوا دیکھا؟ اصل میں دیکھا. یقین کریں جو اس کو دیکھنے کا حسن ہے، ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک لمبا سا سنتری کھڑا ہے، ایک پولیس مین کھڑا ہے، بالکل سیدھا ہوتا ہے، سیدھا جاتا ہے، اور اس کے اوپر کھجوروں کا ایک جھنڈ ہوتا ہے، بیچ میں ادھر ادھر نہیں، یعنی فوکسڈ. اگر آپ اپنے پاس تھوڑے سے چند پوائنٹ لکھاؤں گی، ویسے ہم اسی آیت کی تفسیر میں تقریباً 2 صفحوں پہ ہم نوٹس لکھتے ہیں کہ مومن اور درخت کا تقابل، لیکن چند باتیں تاکہ ہم اس سیشن سے بھی فائدہ اٹھا سکیں اور اپنا محاسبہ بھی تو کریں، کتاب الایمان پڑھنے کے بعد ہمارا ایمان کہاں تک پہنچ گیا. تو مومن ایک درخت کی طرح کیسے ہوتا ہے کہ درخت لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں، مومن بھی انسانیت کو فائدہ دیتا ہے. پیچھے پڑھ چکے ہیں آخری حدیث، بھولنی نہیں آپ نے، کیا دین و نصیحہ. خیر خواتا ہے، پھر آپ دیکھیے کہ درخت فوکسڈ ہوتا ہے، سیدھا اوپر جاتا ہے، اللہ کی طرف اس کی نظریں ہیں. مومن بھی سیدھا اللہ کی طرف جاتا ہے، فوکسڈ ہے، ڈسٹریکٹڈ نہیں ہے، یہ کر لوں وہ کر لوں اور اینڈ پہ نتیجہ کچھ بھی نہیں. بعض لوگ لک بزی ڈو نتھنگ، سارا دن بھاگ رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، 10 سال سے بھاگ رہے ہیں، اینڈ پہ کچھ بھی نہیں. آپ انسانیت کو کچھ دے ہی نہیں سکتے، جہاں بیٹھتے ہیں کچی پکی باتیں کر کے آتے ہیں، ادھر کی ادھر سنی ادھر کی ادھر، کچھ فائدہ نہیں ایسے علم سے، صرف اور صرف بگاڑ پیدا ہوتا ہے. जिसके अंदर ना कोई असल है ना बीच है। इसके बरक्स आप एक जगह फोकस्ड होते हैं, आप सीखते हैं, आपकी गलतियां निकलती हैं, पुख्तगी पैदा होती है, आप कुछ सालों के बाद दूसरों को फायदा देते हैं। फिर आप देखिए कि दरख्त की कितना भी ऊंचा चला जाए लेकिन उसका जमीन से ताल्लुक नहीं टूटता, तो मोमिन अपनी असल नहीं भूलता। अल्लाह उसको दुनिया की इज्जत दे, दौलत दे, माल दे, औलाद दे, लेकिन वो अपनी औकात नहीं भूलता। फिर इसी तरह आप देखिए कि दरख्त को लोग पत्थर मारते हैं तो दरख्त जवाब में खजूर देता है, फल देता है। किल विद काइंडनेस, लोग आपसे बुरा भी मामला करें तो आप उनके साथ अच्छा मामला करें। फिर इसी तरह आप देखिए कि दरख्त के नीचे साया मिलता है, छांव मिलती है। सच्चा मोमिन जो होता है लोगों को खुशियां देता है। आप अगर अपने ईमान को चेक करना चाहती हैं किताबुल ईमान पढ़ने के बाद और अब अगले बाप पे आने के, तो खुद से पूछिए क्या मैं लोगों को फायदा दे रही हूं। फिर इस पे बहुत कुछ है, आप लोगों को चाहूंगी कि 3-4 लाइनें छोड़ दें और खुद भी लिखें, और अगर आप पे बोझल ना हो तो इस आयत की तफसीर सुन लें और उसमें से पॉइंट्स नोट करके अगर आप करें तो आप देखिए किस तरह आपको मजा आएगा कि कुरान के साथ साथ हदीस सीखने से इंसान का इल्म कितना पुख्ता हो जाता है और फिर वो उससे फायदा उठाकर दूसरों को भी फायदा देता है और अपने आप को भी फायदा देता है। तो इंशाल्लाह ताला यही करना है। एक छोटी सी एक्टिविटी कर लीजिए कि अपने नोट्स में एक दरख्त बना लें और उसके बिलमुकाबिल एक मोमिन को पेश करके खुद को चेक करें, क्या मेरी जात से इंसानियत को फायदा दे रहा है। जहां कुछ दरख्त होते हैं वहां आप देखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत मंजर होता है। सच्चे मोमिन किसी बस्ती में हो तो वहां से लोगों को हमेशा खैर मिलती है। आज हम मुसलमानों ने दूसरों को खैर देने की बजाय वहां जाकर और ही बिगाड़ पैदा करना शुरू कर दिया। तो इस तरह की सारी चीजें जो है आप देखें, अपना मुहासबा करें, अपने घर में आप ये लगा सकते हैं और इससे इंशाल्लाह फायदा क्या होगा कि आपके जहन में खैर आएगी। अगली हदीस देखते हैं, बाप नंबर 4 है और हदीस नंबर 57। अल किरातु वल अर्दु अल मुहद्दिसी, शागिर्द का उस्ताद के सामने पढ़ना और पेश करना। यानी इस हदीस से हमें क्या मिलेगा कि उस्ताद के सामने बैठकर शागिर्द पढ़ता भी है और उसको अपनी बात भी पेश करता है। कैसे था? अन अनस रजी अल्लाह अनहो, हजरत अनस रजी अल्लाह अनहो से रिवायत है, काला फरमाया, बैनमा नहनु जुलूसु मा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मस्जिद, एक मर्तबा हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे मस्जिद में। कौन सी मस्जिद थी? मस्जिद नबी थी। दखल रजुलुन अला जमलिन, दाखिल हुआ एक आदमी ऊंट पर, यानी एक आदमी ऊंट पर बैठा हुआ मस्जिद में आया या वहां दाखिल हुआ। फिर क्या हुआ? फअनाखतु फिल मस्जिदी सुम्मा अकलहु, फिर उसने अपने ऊंट को बिठाया और फिर बांध दिया। यानी ये लफ्ज देखिएगा, अनाखु, उसको क्या किया? उतरा, यानी ऊंट को पहले बिठाया। आप कहते ना कि ऊंट बहुत ऊंचा होता है तो पहले ऊंट को बिठाना पड़ता है, फिर उसके बाद सुम्मा अकलहु, अकलहु का लफ्ज क्या? उसको बांधा। ये जो लफ्ज अकल है ना, वो भी इसी से है। अकल हमें बांध देती है, दिल हमें बहुत सारे कामों पे माइल करता है जबकि अकल बांधती है। सुम्मा काला, फिर कहा, अय्युकु मुहम्मदुन, तुम में से मोहम्मद कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे पता चलता है कि वो आने वाला शख्स अजनबी था, उसको पता नहीं था कि आप कौन है। वन नबी यू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मुत्तकियुन, तकिया लगाए हुए थे, बैना, दरमियान, जहरा नहीं, दरमियान अपनी पुश्त के। यानी उस वक्त सहाबा कराम कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकिया लगाए हुए थे। फकुलना, तो हमने कहा, हाजर रजुलू, ये आदमी, अलब यदु, सफेद रंग वाले, मुत्तकियुन, तकिया लगाए हुए, ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी सहाबा कराम ने अल्लाह के नबी का तारुफ करवा दिया। फकाल लहुर रजुलू, फिर वो शख्स आपसे कहने लगा, इब्न अब्दुल मुत्तलिब, ए अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, यानी आपको आपके दादा की नस्बत से पुकारा। फकाल लहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लम ने कहा, कद अजब तुका, पूछो क्या है, क्या सवाल है, मैं आपको जवाब दूंगा। फकाला, तो उस शख्स ने कहा, इन्नी साइलुका, बेशक मैं सवाल करने वाला हूं आपसे, यानी मैं आपसे कुछ पूछूंगा, और फमुशद्दिदु अलैक, मैं शिद्दत बरतूंगा आप पर, फिल मसअलती, सवाल पूछने में। खुद ही कह रहा है कि मैं सवाल पूछने में जरा सख्ती करूंगा। फला तजिद अलै फी नफसी का, पस ना पाना अपने दिल में मेरे खिलाफ कुछ, यानी मैं सख्ती तो करूंगा तो आप इस पे माइंड ना कीजिएगा, नाराज ना हो। काला, आपने फरमाया सल अम्मा बदा लका, सवाल करो कोई बात नहीं, जो चाहो पूछ लो। मुराद है कि ओके ठीक है। इससे पता चलता है कि न्यू कमर्स के लिए अल्लाह के नबी कितने रिलैक्स थे, क्योंकि उनको तो इल्म के एटिकेट्स नहीं पता। अब अपना स्टूडेंट ही ये बात करे तो क्या जवाब देना चाहिए? यही जिसको कहना चाहिए जाके तुम दोबारा दरसो तदरीस के अदाब पढ़ो। तो याद रखिए यह अमल की बात लिखी है कि आने वाला जब अजनबी होता तो अल्लाह के नबी उसको और तरह से डील करते, और जो आए हुए बैठे हुए पूरा मिजाज समझे हुए माहौल जानते हैं, वो कोई गलती करें तो फिर वो फर्क होगी। तो अल्लाह के नबी रिलैक्सड हुए, और हमारे लिए भी अमल की बात है कि नए लोगों को हमेशा वेलकम कहना चाहिए दीन की महफिलों में। खैर, आपने उसको कहा कि तुम पूछ लो। फकाला, फिर वो बोला अस्सलुका, मैं आपसे सवाल करता हूँ, बि रब्बी का व रब्बी मन कबल का, आपके और आपसे पहलों के रब की कसम से। ये जो बा है ना, ये कसम का, वाओ भी रब कसम का, रब के नाम की कसम देकर पूछता हूँ। अल्लाहु अरसलका इलन नासि कुल्लिहिम, क्या अल्लाह ने आपको सारे लोगों की तरफ बनाकर भेजा है नबी? यानी कि आपको अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। फ़काला, तो आपने फरमाया अल्लाहुम्मा नाम, आपने फरमाया हाँ अल्लाह गवाह है इस पर कि वाकई मुझे अल्लाह ने ही बनाया। काला, कहने लगा अनशुदुका बिल्लाही, मैं आप पर कसम दिलवाता हूँ या आप पे सख्ती करता हूँ। अल्लाहु अमरक अन तुसल्ली सलावातिल खम्स फिल यौमी, कि अल्लाह ने आपको हुक्म दिए कि पांच वक्त की नमाजें पढ़ो एक दिन में। वल लैलाती, और रात में, यानी कि अल्लाह ने आपको दिन रात में पांच नमाजें पढ़ने का हुक्म दिया। काला, आपने फरमाया अल्लाहुम्मा नाम, अल्लाह की कसम हाँ अल्लाह ने कहा है। काला, फिर वो बोला अनशुदुका बिल्लाही, मैं आप पर सख्ती करूंगा अल्लाह के नाम पर। अल्लाहु अमरक अन तसूमा हाज़ा शहर मिन सनती, कि अल्लाह ने आपको हुक्म दिए कि एक साल में एक महीने के रोजे रखे। काला, आपने फरमाया अल्लाहुम्मा नाम, हाँ अल्लाह की कसम अल्लाह ने ऐसा कहा है। यदि वो बड़े दो टोक सवाल कर रहा है कि ये बातें आप अपने पास से तो नहीं कह रहे, तो हर बात पर अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि मुझे अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है। قال انشدك بالله, मैं आप पर शिद्दत बरतूंगा या आपसे कसम लूंगा अल्लाह के नाम पर। الله امرك ان تاخذ هذه الصدقه من اغنيائنا, क्या अल्लाह ने आपको इस बात का हुक्म दिया है कि आप सदका लें ये हमारे दौलतमंदों से। व तकसीमा हा अला फुकराइना, फिर उसको तकसीम कर दीजिए हमारे फकीरों पर। فقال النبي صلى الله عليه وسلم, तो अल्लाह के नबी ने कहा اللهم نام, हाँ अल्लाह इस पर गवाह है, ऐ अल्लाह तू गवाह है। فقال الرجل, फिर उस शख्स ने कहा آمنت بما جئت به, मैं ईमान ले आया उस पर जो तू लाया है, यानी जो दीन तू लेकर आया है मैं उस पर ईमान ले आया। वाना रसूलु मम वरा इमिन कौमी, और मैं अपनी कौम का रसूल यानी कासिद बनकर खादर खिदमत हुआ हूँ, यानी मैं अपनी कौम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वाना दिमाम उबन सालबाता, अपना नाम आप बता रहे हैं कि मेरा नाम जिमाम बिन सालबा है। अखू बनी साद इब्ने बकरिन, और कबीला साद बिन अबी बकर से ताल्लुक रखता हूँ। अब यहाँ आपको बहुत सारी बातें दिखी। पहली बात है कि वो शख्स जो था वो बहुत ज़्यादा टू दी पॉइंट बात कर रहा है, दो टोक बात कर रहा है, लेकिन अल्लाह के नबी ने उसकी बात पे कोई रिएक्शन शो नहीं किया। फिर दूसरी बात है कि उसने आपको आपके दादा के नाम से पुकारा, तो किसी मशहूर शख्स के नाम पर निस्बत दे के पुकारा जा सकता है। फिर इसके बाद एक और चीज़ पता चलती है कि अल्लाह के नबी ने जितनी भी बातें शरीयत की पेश की हम सब तक, वो सब अल्लाह की तरफ से। ये हदीस फिर गवाही बन गई कि ये जो शरीयत है, इस्लाम हमारे पास आया है, ये अल्लाह के नबी ने अपनी मर्जी से नहीं दिया बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म से हुआ। फिर इसी तरह से आप देखिए कि इसमें एक और चीज़ भी पता चलती है कि बस लोग सिर्फ थोड़ी सी बात सुनते हैं लेकिन उस पर अमल करते हैं। ये नुमाइंदा था। यहाँ से आप वो माहौल भी देखिए कि अल्लाह के नबी की शोहरत आम हो चुकी है और लोग आपसे बातें सुनते समझते फिर आगे लेकर जाते थे। तो अब आप इसको अपने ऊपर लीजिए। हम भी तो हदीस पढ़ रहे हैं इस वक्त, अल्लाह के नबी की बात है, हमने सुनी। क्या हम में से कोई ऐसा है कि इस बात को सुनकर पीछे अपने कबीले और कुंबे तक भी पहुंचाए? फर्ज बन जाता है इंसान का अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाए जब वो बात उसके अपने फायदे की हो। आप देखिए, हम जो कुछ भी पढ़ सुन रहे हैं, क्या हम कह सकते हैं कि दूसरों को इसकी जरूरत नहीं है? सबको जरूरत है। तो अल्लाह ताला हमें इल्म की हिर्स दे। आखिरी हदीस आज के सेशन की करेंगे। अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باس بكتابه رجلا, اللہ کے نبی نے بھیجا اپنے خط کے ساتھ ایک شخص کو, یعنی آپ نے ایک خط بھیجا ایک شخص کے ہاتھ, وَأَمَرَهُ أَن يَدْفَعَهُ إِلَىٰ عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ, اور آپ نے حکم دیا اس کو کہ یہ خط سپرد کرے عظیم بحرین کو, یعنی بحرین کا جو حاکم تھا کون تھا؟ کسرا, کسرا لقب تھا, تو اس کو جا کر دے دینا. خیر جب اس کو ملا, فدفعہ عظیم البحرین الی الکسرا, جب اس نے اس کو عظیم کسرا کو دیا, فلما قرأہ, پھر جب اس نے اس کو پڑھا, مزقہ, پھاڑ دیا اس کو, قرآن میں یہ لفظ آتا ہے مزقہ ممزق, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس نے اس خط کو, قالا, تو آپ نے فرمایا, فدا علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی وہ جو حدیث بیان کرنے والے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس پر بد دعا کی اللہ کے نبی نے ان کے لیے, این یمزکو کل ممزق, کہ اللہ ان کو ریزہ ریزہ کر دے, ریزہ ریزہ کرنا. تو یہاں سے دو تین باتیں پتہ چلتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا, ابھی لکھنا پڑھنا علم باتیں اتنی عام نہیں تھیں, لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی خط کی صورت میں لکھ کے بھیجتے تھے, لکھی ہوئی باتوں کی بات ہے. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ غیر مسلموں کو اعلان جنگ کر کے ان پہ حملہ کرنے کی بجائے ان کو شامل کر لینا چاہیے, پہلے تبلیغ کرنی چاہیے. پھر تیسری بات یہ کہ اس نے جو کیا آپ کے خط کے ساتھ, آپ نے ویسے ہی بد دعا دی, کیا اب یہ اللہ کے نبی کی نرمی کے خلاف ہے؟ بالکل نہیں خلاف. دیکھیے لوگوں کے ساتھ ویسے ہی رویہ اختیار کیجئے جیسے کہ لوگ آپ کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں پڑھنے کے بعد حقیقت میں ہمیں اللہ کے نبی کا مزاج بھی سمجھ آتا ہے کہ آپ نرم تھے, سافٹ تھے, باصول تھے, لیکن اس کے باوجود آپ ڈس آرڈر کو پسند نہیں کرتے تھے, غلط چیزوں کی سائڈ نہیں لیتے تھے. بعض دفعہ ہم آپ کا ایک بڑا ہی رانگ سا ایسٹیمیشن لے لیتے ہیں کہ آپ تو پتہ نہیں کس طرح کے تھے اور کیا تھے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یہ ساری باتیں پڑھنے کے بعد ہمیں حکمت بھی دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے اپنے لیے عمل لینے کی توفیق دے. کوئی بات جو آپ کو ذہن میں آئی ہو ان باتوں کو سننے کے دوران تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. کوئی کوئسچن, کوئی کمنٹ پلیز. کیا سیکھا آپ لوگوں نے آج کے سیشن سے؟ جی آپ ادھر سے. جی
کروں گی
نا, یا اس کو پورا مروں گی, ان لوگوں
کے بھی کیا رعایت ہے؟ پانی لگتا ہی نہیں ہے یا پانی لگتا ہے پورا, ماشاء اللہ لگتا ہے سارا, لیکن یہ کہ جیسے
جی آپ کا پہلی بات ہے کہ سوال, اس سے اگلا ٹاپک انشاءاللہ باب الوضو آئے گا اس میں, لیکن تب تک کے لیے ظاہر ہے کہ آپ رک نہیں سکتے. تو یہ جو ہم پانی پورا بہاتے ہیں اور گراتے ہیں یہ شرط نہیں ہوتی. ایون اگر یہ دیکھیں یہ گلاس پانی ہے تو اس سے بھی وضو ہو سکتا ہے. پورا ہاتھ گیلا کر کے اچھی طرح میک شور کر کے اوپر نیچے ہاتھوں پہ ڈال لیں, اور آپ کے لیے بیسٹ چیز یہ کہ آپ مسح کیا کریں, یعنی ایک دفعہ صبح اٹھ کے جب پاؤں دھو لیے پھر آپ ساکس پہن لے تو اگلے دن تک پھر آپ اس کو اسی طرح چلا سکتے ہیں. لیکن یہ کہ پاؤں پورا گیلا ہو جائے یہ لازم ہے, یہ شرط نہیں ہے کہ پورا پانی اوپر سے بہایا بھی جائے. جی جو ہی ساکس اتری وضو ٹوٹ جائے گا. جی یعنی وضو ٹوٹا ہوا ٹوٹنے سے پہلے اتاریں گی پھر نہیں ٹوٹیں گی. دیکھیے آپ نے وضو کیا, وضو کی حالت کے دوران ہی جب مرضی ابھی یا گھنٹہ بعد بھی وضو وہی تھا جو کیا تھا, تو ساکس پہن لی. اب آپ کا اگلا وضو اس ساکس پہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے مثال ہے وضو کیا پھر ساکس پہن لی, پھر ساکس کے بعد ان ساکس پہ ایک دفعہ مسا بھی کر لیا, پھر کسی وجہ سے ساکس اتاری تو دوسری پہنیں گے, جو ہی یہ ساکس اتریں گی تو دوسری پہننے سے پہلے آپ کو دوبارہ پاؤں دھونے پڑیں گے. ٹھیک ہے جی.
سر جی یہ جو آج کل ٹاک شوز ہوتی ہیں اس کے اندر جیسے وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے حق کو تو سامنے لے کر آنا ہے, اور بہت ساری باتیں پتہ بھی چلتی ہیں جو کہ انڈر ہینڈ ہو رہی ہوتی ہیں, تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے؟ جو لوگ بری باتیں کر رہے ہیں ان کو نصیحت کرنی چاہیے, اور حکومت کی کیا ذمہ داری ہے یا ہماری کیا ذمہ داری ہے؟
جی ان کا سوال میرا حال ہے وہی بات ہے کہ خیر خواہ ہونا چاہیے, حکمرانوں کی برائی نہ کریں. تو ان کا سوال ہے کہ جو ٹاک شوز ہوتے ہیں ان کے اندر جو حکمرانوں پہ بات چیت کی جاتی ہے اور پبلک کے سامنے لایا جاتا ہے تو اس پہ کیوں کم ہے؟ مجھے ایک جواب دیجئے کہ جب یہ ساری باتیں پبلک کے سامنے آتی ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ और इंतजार फैलता है। जिनको आना है वो आएंगे, वोट जिन्होंने जिनको देने हैं वो देंगे। ये इस्लाम का तरीका नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लम ने कभी दूसरों के गुनाहों को, बुराइयों को पब्लिसाइज नहीं किया, लेकिन ये सब डेमोक्रेसी की पैदावार है। मेरे जैसे अनाड़ी अनपढ़ बंदे भी ऐसे क्लिप्स देख के जान जाते हैं कि क्या हो रहा है। इस्लाम कहता है निफ दयवल इन द बट, किसी में कोई बुराई देखिए आप उसके घर चले जाएं, उसे टाइम लें, उसको बताएं कि देखिए ये बात ठीक नहीं है, आप इसको चेंज कर लें, खत्म हो गई। ये जो आजकल आपको अपने मुल्कों में दिख रहा है ये सब इस्लाम के मिजाज से बिल्कुल दूर है। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं देखेंगे तो वो नहीं पेश करेंगे, इसको इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए। और अगर कोई ऐसी बात करता है तो ये सिर्फ देखिए, ये आप और मैं आज वेस्ट की जुबान बोलते हैं, आजादी राय, फ्रीडम ऑफ चॉइस, इस्लाम का मिजाज इससे फर्क है। बिल्कुल कट डाउन करना चाहिए ऐसी चीजों को पढ़ने सुनने की बजाय, बल्कि रूट कॉज ढूंढें कि वो लोग बेचारे जो ऐसे गलत काम करते हैं, हम किस तरह उनको दीन का पैगाम दे सकते हैं। इससे इस्लाह हुई? आज तक तो हो नहीं सकी, तो आगे कैसे होगी? तो इस तरीके से कभी भी खैर नहीं आएगी, बल्कि बुराई वहां तक फैल जाती है जहां के नहीं होती। और जिस किस्म के टॉक शोज माशाल्लाह आजकल हमारे आते हैं कि कुर्सियां भी चलने लग जाती हैं और लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं और मुर्गियों कबूतरों की तरह लड़ रहे होते हैं सियासतदान, तो ये तो कोई दीन का तरीका नहीं है। ठीक है जी। अगर जूते पे मसा किए तो जब जूता उतरेगा तो मसा टूट जाएगा। ठीक है, आप ये सारे इश्यूज जब पढ़ेंगे, अभी अगला बाब आ ही रहा है इंशाल्लाह, ये टॉपिक ज्यादा लंबा नहीं, और इसके बाद बाबुल वजू बहुत लंबा चलेगा, उसमें खुद बहुत हदीसें सामने आएंगी, मेरी बात से ज्यादा आपका शरह सदर उसको सुन के होगा। ठीक है, चलिए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।